मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 7 अगस्त 2015 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी फरवरी 2016 में जो 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और इन दोस्तों के नाम हैं श्रुति जांगिड़, आप फतेहपुर से हैं, ओम प्रकाश कुमावत, आप जयपुर से हैं, मुकेश कुमार, आप इलाहाबाद से हैं, प्रत्यूष कुमार पटना से हैं, सनत कुमार कानपुर से हैं, अभिषेक सिंह तोमर ग्वालियर से हैं और निशा कुशवाहा इलाहाबाद से हैं। तो श्रुति, ओम प्रकाश, मुकेश, प्रत्यूष, सनत, अभिषेक और निशा, आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सब आए और ज्यादा से ज्यादा लेकर जाएं और हम लोग अभी फिलहाल मोटिवेशन वाले पार्ट में किस तरीके से ज्यादा ले जाया जा सकता है इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि है तो हालांकि ये इम्पोर्टेंट सभी के लिए, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों या न कर रहे हों, लेकिन डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये अनिवार्य जैसा हो जाता है जो खासकर क्लास के लिए आने वाले हैं। मित्रों, आप सब क्लास में आने वाले हैं, इसकी एक फीस है जो आप देंगे, आप आने जाने का खर्च बियर करेंगे, यहां रहने का खर्च बियर करेंगे, साथ ही अपने 15 दिन भी आप यहां लगाएंगे। तो आप इन सब की वैल्यू को तभी वसूल सकते हैं जब आप यहां से ज्यादा लेकर जा सकें। और आपका लेकर जाना न केवल आपके सिविल सर्विस या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ही आपके लिए मददगार होगा बल्कि पूरी जिंदगी के लिए बेहद मददगार होगा। तो मित्रों, इससे पहले कि हम कैसे इस इशू पर बात करें कि आप ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते हैं, मैं एक दो जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं वो आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि बाद में होता यह है कि बोलने की रफ्तार में या भावनात्मक आवेश में, जो भी आप कह लीजिए, चीजें छूट जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, आज शुक्रवार है तो डेफिनेटली कल शनिवार होगा और शनिवार के बाद रविवार होगा। तो शनिवार और रविवार को ये डेली ऑडियो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनके मेल पर जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है वो भेज दिया जाएगा। तो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स लगातार अपने मेल को एक्सेस करते रहेंगे। हाँ, लेकिन जो दूसरी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं, सैटरडे को जो पेपर क्लिपिंग्स हैं वो नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं के जो आर्टिकल्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश में वो भी आप सबके लिए अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, एक दूसरी सूचना है जो विपुल वार्षणे ने बरेली से भेजी है। उन्होंने ईमेल में लिखा है कि जो इस बार के सिविल सर्विस की जो परीक्षा थी उसमें जिनकी थर्ड रैंक आई है निधि गुप्ता, फोर्थ रैंक है वंदना और 16th रैंक है अनन्या, इनकी परीक्षा की तैयारी कैसे करें के वीडियो अवेलेबल है। ये है YouTube, BBC हिंदी में ये अवेलेबल है और यदि आप लोग चाहें तो आप इन्हें सुन सकते हैं और बेहतर होगा कि एक बार आप लोग सुने। दोस्तों, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहूंगा जो मैं समझता हूं कि जरूरी है। आप जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते हैं उनकी बातें सुनिए, लगभग वही बातें होती हैं, मतलब उसमें आपको बहुत ज्यादा अंतर मालूम नहीं देगा। हां, कहने के अंदाज अपने अपने अलग होते हैं और अपनी अपनी तैयारी के फ्रेम के हिसाब से हो सकता है कि उनके तैयारी करने का ढंग भी थोड़ा बहुत अलग एक दूसरे से हो, लेकिन जो मेजर जो चीजें होती हैं, जो बड़ी चीजें होती हैं, वो लगभग एक जैसी ही होती हैं। इसीलिए मैं आप सबको ये सलाह देना चाहूंगा कि काफी कुछ हम इन सब के बारे में जान चुके हैं, आप सब कुछ सुन भी चुके हैं, बीच बीच में अगर आपको लगता है तो आप फिर से सुनते रहें, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रखिए इसको कभी मत भूलिए कि सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। वो आपको बता रहे हैं कि तैयारी कैसे की जानी चाहिए, वो आपको बता रहे हैं कि किस सड़क पर चलना चाहिए, किस मार्ग पर और किस तरीके से चलना चाहिए, लेकिन यदि आप अपने कमरे से निकलकर चलेंगे नहीं और उसी पैटर्न पर नहीं चलेंगे, तब तक मित्रों आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी, आप अपनी मंजिल को पा नहीं सकेंगे। इसीलिए ध्यान इस बात का रखिए कि वो जो बता रहे हैं, जो कहा जा रहा है, आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, या केवल यह है कि उनसे जान लिया, सुनने का सुख ले लिया और आपको लगने लगा कि हम तो जान गए हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए और बात खत्म हो गई। जब आप उनकी कही गई बातों को, एक एक बातों को, उनकी छोटी छोटी बारीकियों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको अपने अभी के पैटर्न को कितना बदलना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से ही उन सारे पैटर्न पर चल रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत बदलना पड़े, लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अपने पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव लाना होगा। और दोस्तों यही वह बिंदु होता है जहां हम बैकआउट कर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि होता यह है कि जब हमें अपने पैटर्न को बदलना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। अपने को बदलना सबसे मुश्किल काम है, हां दूसरे को बदलने के लिए कहना सबसे आसान काम है। तो जब हम बदलते हैं तो तकलीफ होती है और हम तकलीफ उठाना नहीं चाहते। ये बात अलग है कि पाना सब कुछ चाहते हैं, ये हमारे अपने द्वंद्व हैं, अपने विरोधाभास हैं और हमारी पूरी की पूरी जिंदगी खुद के ही इन द्वंद्वों में उलझ जाती है, इन विरोधाभासों में उलझी रहती है और मिल कुछ विशेष नहीं पाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं इसके साथ ही, आप सब YouTube बीबीसी हिंदी पर अवेलेबल है, आप इनको बिल्कुल देखें, बीच बीच में भी देखते रहें, लेकिन याद रखिए इस मनोवैज्ञानिक भ्रम से अपने को बचाइए कि अगर आपने इनको वहां सुन लिया है, देख लिया है, तो आप सब कुछ जान गए हैं और आपकी बात बन गई है। नॉट एट ऑल, इस बारे में आप सब बिल्कुल सतर्क रहिएगा। दोस्तों अब मैं आता हूं लेने के सिद्धांत पर। हम लोग बहुत लगभग इस पूरे सप्ताह बात कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है और बहुत जरूरी बात भी है, और खासकर आप देखिए कि कैसे एक छोटे से पॉइंट को लेकर कितना उसे इनलार्ज किया जा सकता है, कैसे उसे अलग अलग कोणों से सोचा जा सकता है और किस तरीके से अपनी बातें रखी जा सकती हैं, आपको साथ ही साथ ये भी जानने को इसमें मिल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं एक उदाहरण के जरिए, जो सच्ची घटना रही है उसके जरिए एक पॉइंट पर बात करना चाहूंगा। और वो पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब लेने वाला होता है तो बट नेचुरल है कि दो पार्टी होती हैं, एक लेने वाला होता है और दूसरा देने वाला होता है, राइट? चाहे वो देने वाला प्रकृति ही क्यों ना हो, आसमान ही क्यों ना हो, धरती ही क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो देने वाला होता ही है, चाहे जिस रूप में भी हो, वो अदृश्य रूप में ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तो आप लेंगे कैसे, ठीक है? दो लोग होते हैं हम सामान्य रूप से माने, और याद रखिए कि जो लेने और देने दोनों की जो क्षमता है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि लेने वाला कितना विश्वसनीय है, यानी कि जो पात्र है, जो ले रहा है, उसके ऊपर ये जो देने वाला है ये कितना विश्वास कर पा रहा है। और ये जो विश्वास करने की जो जिम्मेदारी है, याद रखिए ये देने वाले पर नहीं होती है, ये लेने वाले पर होती है कि वो देने वाले को ये विश्वास दिला सके कि मैं पूरी तरह से लेने को तैयार हूं और आप मुझ पर पूरा पूरा 100% विश्वास कर सकते हैं। यहां लेने वाला अपनी जिम्मेदारी से यह कहकर नहीं बच सकता कि भैया मैंने तो फीस दे दी, मैं तो उसके पास गया, उसने बुलाया, मैं उससे 2 घंटे बैठा भी, लेकिन मिला मुझे कुछ नहीं। उसका कारण रहा होगा, अगर आपको नहीं मिला है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। मित्रों मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है और मैं थोड़े से विस्तार से बताऊंगा ताकि इसके जो न्यूएंसेस होते हैं, जो बड़ी बारीकियां होती हैं, आप उन बारीकियों को भी पकड़ सके। देखिए मोटी मोटी बातें आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत मैं नहीं समझता, लेकिन जो बारीकियां होती हैं उनको जो पकड़ पाता है और जो जितनी बारीकियों को पकड़ पाता है वही उसके उतनी गहराइयों तक पहुंचता है, और जो जितनी गहराइयों तक पहुंचता है, गहरे पानी पैठ, उनको उतनी ही ज्यादा चीजें मिलती है, क्योंकि मोती तो गहरे पानी में ही होते हैं, उथले पानी में मोती नहीं मिलते। फ्रेंड्स हुआ क्या कि अभी जब सिविल सर्विस का जब रिजल्ट आया तो लगभग लगभग रिजल्ट आए हुए मैं समझता हूं कि एक सप्ताह हुआ होगा, मैं भोपाल में ही था। तो उस समय मेरे पास एक फोन आया, मैंने नहीं उठाया, दोबारा फोन आया मैंने नहीं उठाया, तिबारा फोन आया मैंने नहीं उठाया, फिर जब फिर फोन आया तो मैंने उठाया, मैंने कहा क्या बात है मुझे जानना चाहिए। तो फोन पर एक स्टूडेंट था या थी, जो भी कह लीजिए, तो मैं थी के लैंग्वेज में चलिए बात करता हूं, क्योंकि चूंकि मैं खुद एक पुरुष होने के नाते जब भी मैं बात करता हूं तो स्वाभाविक रूप से एक तरह से जो मेरा जेंडर होता है वो मेल होता है, जबकि स्टूडेंट में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो चलिए अब मैं स्टूडेंट थी की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं कि चलिए एक स्टूडेंट थी, उसने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूं। तो मैंने कहा कि मेरी किताबें हैं और ये ऑडियो गाइडेंस है, पढ़िए, मिलने की जरूरत मैं बिल्कुल नहीं समझता, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो बोले नहीं सर, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मैं 2 साल से सिविल सर्विस का एग्जाम दे रही हूं और दोनों बार मैं प्री क्वालिफाई करती हूं लेकिन मेन्स में मैं नहीं पहुंच पाती, थोड़े नंबर के लिए मैं चूक जाती हूं, तो मैं एक बार प्लीज आपसे मिलना चाहती हूं, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी। मैंने कहा ठीक है, आप कहां रहती हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में तभी तैयारी कर रही हूं, लेकिन वो रहने वाली कहीं की भी हूं, जो मैं बताना जरूरी नहीं समझता। तो मैंने टाइम दे दिया मेरे दोस्तों, राइट। अब आप इसकी उनकी बारीकियों को देखिएगा, जो मैं विश्वास पात्रता की बात कर रहा हूं उसकी बारीकियों को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है, उनके लिए भी जो क्लास में आ रहे हैं और उनके लिए भी जो वीडियो सुन रहे हैं और उनके लिए ऑडियो सुन रहे हैं और उनके लिए भी जो जिंदगी के किसी क्षेत्र में कहीं से भी किसी से भी कुछ भी पाने की इच्छा रखते हैं। और ये बहुत गजब का फलसफा है दोस्तों, बहुत गहरी फिलॉसफी, हालांकि दिखने में बहुत ही सामान्य सी लग रही है, लगेगी आपको, लेकिन है बहुत गहरी, इसलिए इसकी बारीकियों पर देखिए। तो मैंने टाइम दिया, मान लीजिए कि मैंने कहा कि आप दोपहर में 1 बजे आ जाइए, और लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं जहां मिलूंगा वो जगह थोड़ी सी अननोन जैसी है, बहुत वेल नोन जगह नहीं है, तो उसको ढूंढने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा आप एडवांस में जहां से भी आ रहे हो मान करके चले कि ढूंढने में टाइम लगेगा और आप एग्जैक्ट 1 बजे आ जाइए, राइट फ्रेंड। तो 1 बज गए, उनका आना नहीं हुआ, मैं इंतजार कर रहा हूं, फिर 1:05 पर मेरे पास फोन आया, है ना, क्योंकि मैं अब फीमेल जेंडर में बात कर रहा हूं, तो मैं मतलब वो स्टूडेंट को मैं लड़की मानकर चल रहा हूं, तो अब मैं उसी की तरफ से जब बोलूंगा तो आप फीमेल ही मानेंगे। तो उसने कहा कि सर मैं भटक रही हूं और मैं आ गई हूं लेकिन आसपास हूं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हूं। मैंने कहा कि अच्छा ऐसे करो, कहां पर हो, लोकेशन मैंने पूछी, फिर मैंने उसको गाइड किया कि ऐसे 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 करके तुम चलो तो फिर आ जाओगी। तो ऐसे ऐसे करके वो उसको उसने फॉलो किया, तो 10 मिनट में वो मेरे पास आ गई, 1:15 वो मेरे सामने थी। और मित्रों आने से पहले मैंने उसको 3-4 इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम अपनी मार्कशीट लेकर के आना, 2 साल की जो तुम्हारी मेन्स की जो मार्कशीट होगी वो लेकर के आना, पहला इंस्ट्रक्शन था। दूसरा इंस्ट्रक्शन था कि इस साल के सिविल सर्विस में जनरल स्टडीज के किसी भी पेपर का कोई भी एक प्रश्न उठाना और उसको उसी लगभग लगभग उसी पैटर्न पर लिखने की कोशिश करना जिस पैटर्न में तुमने सिविल सर्विस में लिखा होगा, उत्तर मुझे उसी पैटर्न का चाहिए ताकि मैं इवेलुएट कर सकूं। ये मैंने उससे दूसरी बात कही थी कि तुम ये लेकर के मेरे पास आ जाओ। तो मित्रों वो आई, 15 मिनट लेट आई, और इसके बाद मैंने पहला प्रश्न किया कि मार्कशीट कहां है। तो उसने कहा कि सर मार्कशीट नहीं है, मैं मार्कशीट लेकर के नहीं आई। तो मैंने कहा था कि मार्कशीट लेकर के आना, तो बोले नहीं कि सर मेरी मार्कशीट वहां रखी, दिल्ली में ही रखी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, और जब ये बात जब मैंने उससे मार्कशीट लाने के लिए कहा था तब उसने मुझे बताई थी कि वो दिल्ली में मेरी मार्कशीट है, लेकिन मैंने कहा था कि तुम हाथ से लिख करके ले आना कि कितने कितने मार्क्स किस किस में रहे हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट थी, है ना, कि प्री क्वालिफाई कर चुकी है, मेंस के कर नहीं पा रही, तो समस्या बहुत थोड़ी सी रह जाती, फिर बहुत ज्यादा समस्या नहीं रह जाती। और मैं एग्जैक्ट समस्या को लोकेट करना चाह रहा था बजाय इसके कि मैं एक लेक्चर दे दूं ऐसे ऐसे तैयारी करो कि रियल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने कितनों की इस तरह की रियल प्रॉब्लम सॉल्व की है और उनकी रैंकिंग एकदम हाई हो गई, मतलब केवल ईएनए के सिलेक्शन लिस्ट में आ गया, रैंकिंग बिल्कुल हाई हो गई, क्योंकि समस्या छोटी सी रहती है। इस लेवल पर जो स्टूडेंट पहुंच जाता है उसकी बहुत बड़ी समस्या फिर नहीं रह जाती। तो वो मैंने कहा कि अच्छा वो हाथ से लिखा हुआ तुम लाई होगी, बोले कि सर वो भी मैं लिख करके नहीं लाई। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब ये बता क्वेश्चन लिख करके लाई होगी। बोली हाँ सर, ये मैं क्वेश्चन लिख करके लाई हूं। तो वो दो क्वेश्चन लिख करके लाई थी, वो उसने मुझे पढ़ने को दिया। और मजेदार बात है कि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए थे। तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे नहीं गए थे, मैंने कहा था कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं तुम वो क्वेश्चन लेकर के आना। तो बोले नहीं सर, वो जो पेपर मेरे थे जो एग्जाम के पेपर, वो भी दिल्ली में है। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन याद होगा, कम से कम उस तरीके से लिख लेते, क्योंकि अभी तो एग्जाम दिया है, क्वेश्चन तो याद रहते हैं। तो बोले नहीं सर, वो मुझे याद भी नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी भी क्वेश्चन पर लिख करके ले जाती हूं। और मित्रों, अब आप बताइए कि मैं क्या करता। कोई बात नहीं, चूंकि वो आई थी, मुझे बात करनी थी, मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन उन्होंने दिखाया मुझे। मैंने कहा कि देखो, क्वेश्चन में तुमने कहा है कि डिस्कस, तुम मुझे अपने आंसर में ये बताओ कि डिस्कस कहां है। तुमने ठीक है चीजें तो बता दी, लेकिन वो डिस्कस वाला चैप्टर छूट गया। तो बोला हाँ सर, ये डिस्कस वाला चैप्टर छूट गया। तो मैंने कहा जब डिस्कस वाला चैप्टर छूट गया तो तुम्हारा आंसर आधा हो गया। तो चुप रही, ठीक है। इसके बाद वो मुझसे कहती है कि लेकिन सर, मुझे नंबर तो मिलते रहे ही हैं। मैंने कहा कि कहां मिलते रहे, उतने नहीं मिले हैं। अगर मिलते रहते तो तुम मेरे सामने नहीं होती, सेलेक्ट हो चुकी होती। नहीं मिलते रहे हैं ना, और मुझे वही देखना था कि कैसे नहीं मिल रहे हैं। और उसका एक मेन कारण जो मेरी अभी समझ में आया है कि ये जो डिस्कस होता है, जो एनालिसिस होता है, इस हिस्से को तुम छोड़ देती हो, इसको संभालो। तो बोले कि सर, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि देखो, ये इतना आसान काम तो नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं अभी तुमको दो उपाय बता सकता हूं। एक उपाय तो ये है कि मेरी किताब आई है आप आईएएस कैसे बनेंगे, उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि उत्तर कैसे लिखना चाहिए, और खासकर एनालिटिकल पार्ट को ही मैंने उसमें ज्यादा डिस्क्राइब किया है कि आलोचनात्मक परीक्षण करें, विवेचना करें, स्पष्ट करें, इन सबका क्या अर्थ होता है, ताकि स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ जाए कि क्वेश्चन में अगर ये शब्द आते हैं तो उसे कैसे लिखना है। तो ठीक है। और मैंने कहा कि दूसरा, यदि तुम चाहो तो एक दो दिन के लिए मेरा ऑडियो गाइडेंस आता है, वो सुनकर के देखो, हो सकता है कि उससे तुम्हें मदद मिले। क्योंकि उसमें जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो रेडियो की न्यूज होती है और जो अखबारों की खबरें होती हैं, उनको लेकर के मैं डिस्कस करता हूं और उनके एनालिसिस भी करता हूं, तो तुमको धीरे धीरे वो चीजें पकड़ में आने लगेंगी। बोले सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कोई दूसरा तरीका बताइए। तो मैंने कहा देखो, मेरे पास तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने बता दिया। इसके बाद मित्रों, वो उठी और चली गई। मजेदार बात है कि न तो उसने ये पूछा, नहीं, किताब का नाम मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा मेरी किताब आई है, मैंने जानबूझ करके नाम नहीं बताया था। तो न तो उसने मेरी किताब का नाम पूछा, और न ही मेरे जो ऑडियो आता है, जो डेली ऑडियो जिसे भी आप सुन रहे हैं, उसकी वेबसाइट का एड्रेस पूछा। उठी और वहां से चली गई। मित्रों, ये हम लोग का लगभग 10-15 मिनट का ये वार्तालाप रहा। मित्रों, ये मैं केवल आपको एक केस, जैसे केस स्टडी होती है ना, केस स्टडी आपके फोर्थ पेपर में होगी, केस स्टडी, वो केस स्टडी रख रहा हूं। अब इसको आप माइन्यूटली ऑपरेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे शुरू से ही उसने अपनी विश्वसनीयता खोनी शुरू कर दी। 1 बजे से उसकी विश्वसनीयता का जो बैरोमीटर था, जो पारा था कह लीजिए, वो डाउन होना शुरू हो गया। समय से पहुंच नहीं रही, जबकि मैंने अलर्ट किया था। फिर वो पेपर लेकर के नहीं आ रही है, वो क्वेश्चन लिख करके नहीं आ रही है, अपने मार्कशीट लेकर के नहीं आ रही है। उसको क्या ऐसा हो सकता है कि 1 साल के नंबर ही नहीं मालूम हो? मुझे अभी तक अपने नंबर मालूम है कि मुझे कितने नंबर किस पेपर में मिले थे। भैया, ये तो इतनी बड़ी चीज है कि कोई आदमी कैसे भूल सकता है, और तब तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकता जब वो एग्जाम अभी दे ही रहा है। क्योंकि अपने को तो हर समय इवेल्युएट करेगा ना कि भाई, मुझे इसमें 70 नंबर मिले थे, 250 में 70 नंबर मिले थे, मुझे इससे किसी भी हालत में 100 तक पहुंचाना है, 30 नंबर कवर करना है, तो ये 30 नंबर मैं कहां से कवर करूं। आप अपने को डेवलप तो इसी पैटर्न पर करेंगे। तो नतीजा यह हुआ कि वो अपनी विश्वसनीयता लगातार खोते खोते जीरो क्या माइनस तक पहुंच गई, और 10-15 मिनट के अंदर मैंने पूरी की पूरी एक रुचि, जो एक इंटरेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट में, वो मैं खो चुका था। मित्रों, याद रखिए कि आपकी विश्वसनीयता पर दोनों का रिसीवर काम करता है, और आपकी विश्वसनीयता पर दोनों की वेवलेंथ भी काम करती है। ये कैसे काम करती है, हो सकेगा तो हम लोग नेक्स्ट में इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, आज ये थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं माफी चाहूंगा, और थोड़ा सा लंबा मैंने इसलिए भी इसको कर लिया क्योंकि आज हमारे पास न्यूज वगैरह के लिए बहुत ज्यादा बातें नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और याद रखिए कि ये केवल ऑडियो सुनने तक नहीं है, आप जब कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, उस पर भी है। आप ये मत समझिएगा कि ये किताब तो निर्जीव चीज है, इससे इसको क्या पता चलेगा कि मेरी पात्रता है या नहीं है। वो तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग का रिसीवर तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा ना, तो ये काम करता है। और बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। तो मित्रों आज इसके बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं आज के कल के AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि AIR न्यूज में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट खबरें थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी जिसको हो सकता है कि ज्यादातर स्टूडेंट शायद मिस कर जाएं, वो थी कर्मचारी भविष्य निधि कोष। ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। आप सिविल सर्विस मेंस का थर्ड पेपर उठा करके देखिए, आपको थर्ड पेपर में आप पाएंगे है जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनका कोई ना कोई संबंध आपको पक्का बहुत ही उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मिलेगा। और कर्मचारी भविष्य निधि इकोनॉमिक्स का बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। मैंने जानबूझकर यह बात कही कि स्टूडेंट मिस कर जाएंगे इसे, क्योंकि यह बहुत हार्ड कोर न्यूज नहीं है उस सेंस में, जिसको कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह की इकोनॉमिक्स में चीजें डेवलप हो रही हैं, देश को जिन चीजों की जरूरत है उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अप्लाइड फॉर्म का है और हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम कर्मचारी भविष्य निधि कोष कहते हैं, संगठन कहते हैं, इसने अभी क्या डिसीजन लिया है? इसने डिसीजन लिया है कि उसके पास लोग पैसा जमा करते हैं, जो एम्प्लॉय है वो पैसे जमा करते हैं, यानी एम्प्लॉय देखा ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड PF है ये, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसमें पैसा जमा करते हैं। अब जब ये कोष में पैसा जमा हो जाता है तो सरकार क्या करती है? देखिए इस कोष में आपको ताज्जुब होगा कि सरकार के पास, इसके पास 7 लाख करोड़ रुपए हैं। 7 लाख करोड़ रुपए, इमेजिन कीजिए कि 7 लाख करोड़ रुपए क्या होते हैं। तो सरकार क्या करती है? देखिए होता यह है कि हम अभी तक हमारी जो इकोनॉमी पॉलिसी रही है वो बहुत सतर्क हो होकर के चलने की पॉलिसी रही है। हम बहुत अलर्ट हो होकर के चलते हैं ताकि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, कहीं डिरेलमेंट ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो चूंकि ये दूसरों का पैसा है और ये पैसा लौटाना भी है, तो अभी सरकार करती यह है कि इस पैसे को केवल सरकारी बॉन्ड में लगाती है, सरकारी बॉन्ड में लगा देती है। सरकार बॉन्ड निकालती रहती है ना, क्योंकि सरकारी बॉन्ड का जो पैसा होगा वो बहुत सेफ होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपए का सरकारी बॉन्ड खरीद लिया आपने और वो कहेगी कि आपको 7 साल में 10,000 के बदले में 20,000 रुपए मिलेंगे, तो पैसा आपका सेफ है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है लेकिन पैसा आपका डूबता नहीं है। आप देख रहे हैं चिटफट फंड और इन सब में कितना, शारदा फंड और सहारा फंड में कितना पैसा लोगों का डूब रहा है, यहां वो बहुत सेफ रहता है। तो सरकार सरकारी बॉन्ड लेती है और इससे सरकारी बॉन्ड से जो पैसा बढ़ता है ना, इंटरेस्ट मिलेगा, वो फिर कर्मचारियों में बांट देती है, वो उनको उतना ब्याज दे देती है। ये अभी तक सिस्टम था। तो एक तो उनको ब्याज की दर भी कम मिलती है, जो लोग इसमें पैसा जमा करते हैं उनको ब्याज की दर कम मिलती है, लेकिन चूंकि वो बहुत सेफ मनी होती है तो उसमें लोग रखना पसंद करते हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि नहीं, मतलब इस फंड ने फैसला किया कि इसमें से वो 5,000 करोड़ रुपए एक साल में इस फाइनेंशियल ईयर में शेयर मार्केट में लगाएगी। शेयर मार्केट में लगाएगी, आपने न्यूज में यह भी सुना है कि म्यूचुअल फंड के जरिए लगाएगी। मित्रों ये बहुत थोड़ी सी बारीकियां हैं, मैं उसके डिटेल में तो अभी बहुत ज्यादा इसमें नहीं जा सकूंगा, लेकिन जो म्यूचुअल फंड होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में आप भी सीधे सीधे पैसा लगा सकते हैं लेकिन शेयर मार्केट बहुत रिस्की मार्केट होता है, इसके लिए बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। और जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये पब्लिक का पैसा लेते हैं और पब्लिक का पैसा लेकर के उसे शेयर मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि जो आम जनता होती है वो शेयर मार्केट को समझ नहीं पाती है ना। ये सब्जी का बाजार नहीं है कि 10 रुपए किलो आलू खरीदा और 12 रुपए बेच दिया, 2 रुपए का फायदा हो गया। ये बहुत बहुत हाईली एक्सपर्ट फील्ड है। तो म्यूचुअल फंड में लगाने के कारण के जरिए अगर कोई पैसा लगाता है तो बहुत सेफ रहता है, बहुत सेफ तो नहीं लेकिन कंपैरेटिवली सेफ रहता है और बॉन्ड की तुलना में अधिक फायदा उसे मिलता है। तो इस प्रकार से उस पैसे का सही मायने में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज हो सकेगा, क्योंकि देखिए अगर हम ये पैसा शेयर मार्केट में गया, 5,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में गया, तो ये मान करके चलिए कि ये पैसा इंडस्ट्री में लग रहा है। ये पैसा जब मार्केट में आ जाता है, सर्कुलेशन में आ जाता है, तो वो एक प्रोडक्टिव काम में लगता है। सरकार जब बॉन्ड खरीदती है तो जरूरी नहीं कि वो पैसा सीधे सीधे प्रोडक्टिव काम में ही लगे, वो वेलफेयर के काम में भी लग सकता है। वेलफेयर का काम और प्रोडक्टिविटी का काम थोड़ा सा अलग होता है। प्रोडक्टिविटी में चीजें बढ़ती हैं, वेलफेयर जरूरी होती है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि चीजें बढ़ेंगी। अगर हेल्थ प्रोवाइड करना है पब्लिक को तो डेफिनेटली हेल्थ इज मस्ट, लेकिन उसमें सोचे कि वो उत्पादक कुछ करेगा डायरेक्ट, वो नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लगा दीजिए पैसा, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें उतनी तेजी से पैसा नहीं बढ़ेगा। तो प्रोडक्टिविटी में वो पैसा आ जाता है और इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बहुत ज्यादा गति मिलती है। मित्रों, बहुत समय से इस बात की डिमांड की जा रही थी, इसीलिए एक और भी दूसरी योजना है जिसको हम नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं, एनपीएस। नेशनल पेंशन सिस्टम में भी यही अभी 2004 से गवर्नमेंट ने किया है कि जितने भी एम्प्लॉई होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो करते क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अपना कुछ पैसा डालता है और फिर सरकार भी कुछ पैसा उस फंड में डालती है, और ये जो दोनों का पैसा है जब वो सर्विस पूरी होती है तो एक मुश्त उनको दे दिया जाता है, और इसे ही आप पेंशन समझ ले। फिर बाद में उन्हें पेंशन नहीं मिलती, जो इकट्ठी रकम मिल जाती है उनको दोनों के कंट्रीब्यूशन से, ये उनका पेंशन होता है। तो नेशनल पेंशन स्कीम ने भी इस तरीके से ओपन अपने आप को कर दिया था। तो मित्रों, ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है, जो मतलब बहुत अच्छा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया है। और आप देखेंगे कि केवल यही नहीं है, अब आप इसको सिविल सर्विस से कैसे जोड़ेंगे, ये एक घटना है, इसके प्रभाव के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके गुण दोषों पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट, इसकी समीक्षा करने को आपको कहा जा सकता है इस स्कीम की, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। लेकिन इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ये बनता है कि आपने एक साल डेढ़ साल के अंदर देखा होगा, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से सरकार की कोशिश हो रही है कि जो मनी है, जो पब्लिक के पास जो पैसा है, कैसे उसको बाहर लाया जाए, या जो वेल्थ है उसे कैसे बाहर लाया जाए। याद करने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, क्योंकि जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपके दिमाग को एक्टिव होना चाहिए कि वो फटाफट आपको सप्लाई कर सके। इसीलिए कंटिन्यूटी का महत्व है, मैं तो लगातार सुनते न्यूज सुनते रहने का, अखबार पढ़ते रहने का महत्व है, दिमाग को एक्टिव बनाए रखने का महत्व है। आपको दो तीन स्कीम तुरंत याद आ जानी चाहिए। नंबर एक, आपने देखा है कि सरकार ने अभी एक पॉलिसी बताई है कि जिनके पास भी सोना है वो बैंकों में जमा करें, उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा, या सोना के बदले में उनको ब्याज भी मिलेगा, सोने के बदले में उनको ब्याज मिलेगा, और जब सोना वापस चाहिए तो सोना भी मिल जाएगा, तो कम से कम गवर्नमेंट के पास वो गोल्ड पहुंचेगा तो गवर्नमेंट उसको लिक्विडिफाई करके उसको इकोनॉमी में एक तरह से पंप करेगी, इकोनॉमी में डालेगी। फिर आपने देखा कि जनधन योजना के तहत रूरल सेविंग को गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंस दे रही है, कि इतने सारे अकाउंट खोलकर उसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए इकट्ठे भी हो गए, तो वहां से सेविंग निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार ने यह भी कहा था कि जो मंदिरों में जो खासकर सोना जमा है, हीरे जवाहरात जमा है, उनको भी वो निकाले और वो गवर्नमेंट के पास जमा कर दे, उसके बदले में गवर्नमेंट उनको ब्याज देगी, अदरवाइज वो डेड मनी उनके पास पड़ी हुई है। तो एक कोशिश है सरकार की कि किस तरह से मनी को, एक जो इकोनॉमी का हमारा की जो पाइपलाइन है, जो जीवंत पाइपलाइन है, जो प्रोडक्शन में लगता है पैसा, उसमें लगाया जाए, क्योंकि अभी हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे पास कैपिटल बहुत कम है, और इसीलिए गवर्नमेंट एफडीआई की बात करती है। आपने देखा ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम क्यों चाह रहे हैं, कि हमारे पास पैसा हो तब जाकर के हमको पावर प्रोजेक्ट लगाने हैं, हमको इतनी सड़कें बनानी हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, बंदरगाह बनाने हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, स्किल डेवलप करना है, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए, और इसीलिए अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट धीरे धीरे एफडीआई है उसको अलाउ कर रही है। तो आप देखिए फ्रेंड्स कि ये एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है न्यूज के ऊपर, और जब आप इसकी तैयारी करने बैठते हैं सिविल सर्विस के लिहाज से, इसकी एनालिसिस करने बैठते हैं, तो कितनी सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती है, और मुझे लगता है कि किया भी कुछ ऐसा ही जाना चाहिए। मित्रों, जो दूसरी छोटी सी खबर थी वो थी वही पाकिस्तान, फिर से वो कश्मीर वाले हिस्से में जो है ना वो अटैक हुआ था, और उसमें से फिर एक व्यक्ति पकड़ा गया है, और अब उसको, ये कल की खबर थी, और अब पाकिस्तान उसको डिसोन कर रहा है कि नहीं ये हमारे देश का नागरिक नहीं है, जबकि उसका पिता वहीं पाकिस्तान में है। तो इस तरह के वो चीजें चलते रहते हैं, और खासकर इसको लेकर के पाकिस्तान और भारत के संबंधों को लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एक आर्टिकल है वो आज नॉलेज सेंटर में आपको प्रोवाइड भी किया गया है, उसको आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और भारत इस तरह का स्टेप क्यों ले रहा है, क्योंकि मालूम है कि अगर भारत उसके साथ बहुत ज्यादा उलझता है तो उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा रुक जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान की तो इकोनॉमी आप समझ लीजिए कि एक तरह से लगभग खत्म जैसी ही हो गई है, पूरी तरह से वो अमेरिका जैसे देशों के अनुदान पर टिका हुआ है, और जिस दिन अमेरिका उसको पैसा देना बंद कर देगा पाकिस्तान बिल्कुल लड़खड़ा करके आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए यही बेहतर है कि वो इन चीजों को संभाल करके चले, और वही भारत की नीति भी है। तो उस पर एक आर्टिकल है, आप देख लेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर भी एक एडिटोरियल कमेंट है, इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, वो आपको प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का वो चाइल्ड पोर्न को लेकर के है, अश्लील जो वेबसाइट को बंद किया गया है उस पर भी आर्टिकल है। और फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां भी आपको खासकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी ये मिले, इसके द्वंद्व को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी की भी बात करते हैं, और सरकार जब इसके बारे में कोई डिसीजन लेती है डिसेंसी और उन सब के बारे में, तो वो राइट टू प्राइवेसी का संकट खड़ा हो जाता है। तो इसके बारे में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं, क्योंकि कोर्ट ने समय समय पर जो राइट टू प्राइवेसी के बारे में जो डिसीजंस दिए हैं उसकी वजह से सरकार का जो दृष्टिकोण है बहुत स्पष्ट नहीं रह गया है। तो ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मित्रों अब अंत में मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, और कुछ के मैं नाम ले रहा हूं, बहुतों के नाम नहीं ले रहा हूं, उनके प्रति बहुत आभार। एक मेल आया है शक्ति केसरी का जो इलाहाबाद से हैं, उन्होंने लिखा है कि अपर्णा जो अभी 108वीं रैंक में आई हैं कि उनका जो हिंदी में लेटर हमने नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड किया था उस लेटर को लेकर के वो 300 स्टूडेंट के सामने उसको उन्होंने पढ़ा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा और स्टूडेंट बहुत मोटिवेट हुए। शक्ति आपकी इस कोशिश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह की कोशिश लगातार बनाए रखें, क्योंकि ये इस तरह की कोशिशें आपके इंटरव्यू में आपको बहुत काम आएंगी। अभी आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है लेकिन बाद में आपको पता चलेगा। तो मित्रों अब मैं कुछ अन्य दोस्तों के नाम ले रहा हूं। अखंड प्रताप सिंह आगरा से, स्वर्णिका कुमारी पटना से, कृपेश कुमार अहमदाबाद से, गौरव धीमान चंडीगढ़ से, रंजीत गिरी इलाहाबाद से, देवानंद यादव, प्रदीप कुमार कैथल से, वृषकेतु राय इलाहाबाद से, कैलाश चंद कोसिर जहान नैनीताल से, राहुल गुप्ता बंगलुरु से, कुणाल सोनावले मुंबई से, अमित कुमार शुक्ल गोंडा से, देशराज सीतापुर से, और सिंपी कुमारी बेगूसराय बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों अब मैं इजाजत चाहूंगा, और ये इजाजत दो दिनों के लिए चाहूंगा। आज मैं ये वायदा नहीं कर रहा हूं कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी, हां सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इन दो दिनों का भरपूर उपयोग करें, ये दो दिन आपके बेहद सुखद हों, इस कामना के साथ आप सबको मेरा पुनः अभिवादन। नमस्कार।